समय क्या कहेंगे, कीड़े कब्र में क्या कहते होंगे, आ गया मियाँ जी आ गए अब मेरे पास, वो सब खा जाते हैं। कोई ठीक नहीं है शरीर का, ये सब ईश्वर की व्यवस्था है। कब तक शरीर किसके गोद में रहेगा, किसके उदर में रहेगा, कब तक संग रहेगा, कोई ठीक नहीं। सारा जगत ईश्वर के अनुशासन में चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यह जो नियम है तो केवल आपके पुत्र के लिए ही नहीं है, अगले श्लोक में कह रहे हैं, तो सर्वसाधारण बात है। वयम च त्वम च ये च मे तुल्य कालाश्चराचरः जन्म मृत्युर्यथा पश्चात प्राणैव मधुनाति भः। आप क्यों बच्चे के लिए शोक कर रहे हैं, सबकी तो यही हालत है। वयम च त्वम च और इमे च, वयम च, वयम च से दिखाकर कह रहे हम और अंगिराज जी हैं, हम हैं चाहे अंगिराज जी हैं, वयम च, और चकार से इसके अलावा भी बहुत, वयम च अथवा हमारे और भी भाई हैं या देवता हैं जो कुछ भी है, वयम च और त्वम च और तुम च, तुम और तुम्हारी रानी चाहे तुम्हारा बच्चा जो भी हो, त्वम च और इमे च, इमे च जो वहां और भी लोग रो रहे थे, बहुत से लोग थे, इन्हें ये तुल्य कालाश चरा चरा, जो भी चर और अचर प्राणी है जो तुल्य काल इसमें वर्तमान है, इस समय जो वर्तमान है हम लोगों के समय में, नारद जी कहते हैं उसको तुल्य कालाह कहा, तुल्य काल एक समय में हुए, जैसे हम लोगों में बहुत से मनुष्य एक काल में है। इसमें भारत की जनसंख्या 1 अरब से ऊपर है ना, तो इतने मनुष्य आज के युग में, आज के दिन में, इसको कहेंगे तुल्य काला। उसमें कुछ चार हैं, कुछ अचर हैं, अचर का अर्थ है बहुत से वृक्ष हैं, झाड़ हैं, और चार का अर्थ बहुत से चलने वाले जीव, गाय बैल भैंस पशु पक्षी ये सब हैं। तो चार और अचर जितने भी प्राणी हैं जो तुल्य कालिया तुल्य काला एक समय में हुए हैं, लेकिन जन्म मृत्यु हो पश्चात प्राण नैव मधुना भो। हे राजन, तनिक ध्यान देकर के सुनिए, राजा को भो कह रहा, भो का अर्थ होता है हे। हे राजन, सावधानी से सुनिए, इस समय हम लोग जो हैं कि जन्म के पहले प्राण और मृत्यु के पश्चात ऐसा नहीं थे। जन्म के पहले यह समाज नहीं था, पता नहीं कौन कहाँ था और किस शरीर में था, किस जोनी में था, इसके पहले तो हम लोग थे नहीं, न हम लोग थे न आप थे और न तो ये आपकी प्रजा थे। यहाँ तक कि अचर प्राणी भी बाद में जन्म लेते हैं, कोई कोई जैसे गमला में पौधे हैं तो अचर हैं, लेकिन इनका जन्म बहुत बाद में हुआ है। कुछ हम लोगों के जन्म के पहले कहीं वृक्ष होंगे, बहुत कुछ वृक्ष ऐसे रहते हैं और मनुष्य भी, और कुछ प्राणी ऐसे हैं जो रोज जन्मते हैं मर जाते हैं। तो इस समय जैसा समाज है हम लोगों को अपने पर लेना चाहिए, जो भी बंबई है दिल्ली है या जो भी बड़े बड़े शहर गांव जितने लोग हैं, और जो घर बने हुए हैं, जो रोड बना हुआ है या जो कुछ भी है, यह हम लोगों के मृत्यु के बाद ऐसा ही नहीं रहेगा, बदल जाता है समाज। एक आदमी की मृत्यु के बाद नहीं कह रहा, मतलब जब भी मृत्यु होगी इस लोगों की तो फिर ऐसा ही दूसरा बंबई नहीं मिलेगा, यही जूहू नहीं मिलेगा, दूसरा स्थान मिलेगा, सब बदल जाएगा। और न तो ये नाम रहेगा, न ये रूप रहेगा, न तो परिवार का नामो निशान कुछ नहीं। और हो सकता है आज मनुष्य में है, कल मछली में चले जाए, और मल्लाह लोग जाल में फंसा फंसा कर सब बेच देंगे, खा जाएंगे। ये इतना टेम्परेरी है, बदलता रहता है। और मृत्यु जन्मना प्राक और जन्म से पहले ऐसे नहीं थे, तो अधुना अपूर्ण, इसमें तीनों काल का प्रयोग किया गया है, जन्म मृत्यु पश्चात प्राण, जन्मना प्राक मृत्यु पश्चात, तो अधुना अपूर्ण, हम इस समय भी नहीं है जैसा देख रहे हैं वैसा है नहीं, क्योंकि आद्यंत है, जिस वस्तु का शुरुआत देखा जा रहा है और अंत देखा जा रहा है, वास्तव में वह वस्तु है नहीं। नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टं तस् उभयोरपि दृष्टं तस् तत्वदर्शी भी भगवान बोलते हैं। जो वस्तु पहले नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी, बीच में दिख रही है, तो वास्तव में वो नहीं है, क्योंकि जो वस्तु है तत्व से वह सदा रहती है और बाद में भी रहती है, पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। आत्मा पहले से है और बाद में भी रहेगा, लेकिन शरीर की जो दशा है या समाज की, संसार की, यह पहले ऐसा नहीं था और बाद में ऐसा नहीं रहता है, इसलिए इस समय भी ऐसा है नहीं। यह स्वप्न की तरह मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ है अनित्य है। मिथ्या का मतलब यह नहीं होता है कि यह बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन एक मिथ्या का अर्थ होता है अनित्य, ऐसा नहीं रहेगा। जैसे सपना, सपना सभी देखते हैं, भगवान ने यह सुविधा सबको दिया है, ये ज्ञान देने के लिए सपना देते हैं भगवान, ज्ञान देने के लिए सपना दे रहे हैं। तो सपना पहले नहीं रहता है, सोने से पहले सपना नहीं रहता और जगने के बाद भी सपना नहीं रहता। तो सपना जब तक देख रहे हैं तो वास्तव में उस समय वो नहीं है, यदि सही सही देखा जाए तो। क्योंकि मान लीजिए एक आदमी सपना देख रहा है कि कोई भी, और वहां पर हजारों आदमी जग रहे हैं, तो वे लोग तो नहीं देख रहे हैं उसको, या और लोग सो गए हैं, तो कोई ठीक नहीं है कि कौन क्या सपना देख रहा है। कोई जरूरी नहीं कि मैं जो सपना देख रहा हूं वही सपना और लोग भी देख रहे होंगे, ऐसा नहीं। तो जैसे सपना के काल में स्वप्नगत वस्तुएं सही नहीं है, क्योंकि पहले नहीं थी बाद में नहीं थी, इसी तरह से हम लोग जो इस समय अनुभव कर रहे हैं कि ये हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है, हमारा परिवार है, मैं यह हूं, ये हूं, ये है नहीं वास्तव में, स्वप्न के समान अनित्य है, नष्ट हो जाएगा, था नहीं बस। और वो तो सपना टूट जाता है आंख खुलते ही, और ये सपना बंद हो जाएगा आंख बंद होते, ये सपना खत्म हो जाते, ये ठीक उल्टा चलता है, लेकिन है सपना की तरह। जब अंतिम पलक गिरेगी बस सपना खत्म। ये वास्तव में स्वप्न है जीव के लिए। इसी बात को श्री नारद जी यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। भगवान भी गीता में यही से प्रारंभ करते हैं। कल है पहला श्लोक बोलते हैं भगवान, असचैनन सोचस्तम के बाद वाला श्लोक कैसे है, नत्ते वाहम जात नासम न तुम न जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे मायमतः परम। तो भगवान आत्मा पर बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं थी कि हम लोग पहले नहीं थे, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा लोग नहीं थे, और ऐसी भी बात नहीं होगी कि हम बाद में नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, राजा लोग नहीं रहेंगे, हम लोग पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। पर शरीर तो, मतलब भगवान अपने को बात करके कहते हैं, मेरे अलावा और तो शरीर तो बदल ही जाएगा। यहां पर देह पर बोला जा रहा है, क्योंकि देह को व्यक्ति नित्य मानता है और अचल ध्रुव मानता है। तो एक प्रश्न होता है कि जब यह वास्तव में सत्य नहीं है, कोई भी चीज, चाहे परिवार या हमारा देह या खान पान जो भी है, ये सत्य नहीं है, तो यह प्रतीति कैसे होती है कि यह सत्य है, यह कैसे लगता है कि सत्य है। यदि किसी को दो चार बच्चे हैं और कोई आदमी आकर कहे कि आप सपना देख रहे हैं कि आपके बच्चे हैं, वास्तव में है नहीं, कोई इस तरह से कहे तो आदमी कैसे मानेगा। एक तो प्रतीति इन वस्तुओं की और लोगों की, देखने में सत्य लग रहा है कि ये सब हैं, और दूसरी बात है कि इनमें अभिमान कैसे होता है। अभिमान का अर्थ अभिमति, एक तो यह दिखाई पड़ रहा है कि यह बच्चा है और दूसरी भावना है कि यह मेरा है। दो दो अज्ञान घेरे हुए, एक तो बच्चे की स्फूर्ति हो रही है कि ये बच्चा है और दूसरा विचार उठ रहा है कि मेरा है। ये दोनों क्यों होता है? ये झूठा झमेला है, कुछ है ही नहीं, तो प्रतीति क्यों होती है और अभिमान क्यों होता है? इस तरह के मन में भावना क्यों उठती है? तो इसका उत्तर देते हैं, भूतर भूतानि भूते स सृजत्यवति हम त्यज आत्मसृष्टैर स्वतंत्र अनपेक्षोपि बालवत्। वास्तव में यह भगवान की माया शक्ति के द्वारा रचा हुआ है, भगवान की माया का प्रभाव है। इस श्लोक में भूतेश कहा जा रहा है भगवान को, भूतानाम ईश भूतेश, भूत का अर्थ जीव, जीवों के स्वामी भगवान है, उन्हें भूतेश कहा जाता है, चाहे जगन्नाथ कहिए या जीवों के ईश्वर। तो वे सृष्टि करते हैं, यह सत्य है, वे सृष्टि करते हैं इसको, इनके द्वारा रचा हुआ जगत है। जैसे मैंने पहले कह दिया कि ये जगत मिथ्या है, झूठा है, तो तर्क किया जा सकता है प्रतीति कैसे हो रही है, इसका भी निरसन किया जा सकता है प्रतीति कैसे हो रही है। तो हम पूछ सकते हैं सपने में कैसे प्रतीति होती है, क्या सपने में कोई सृष्टि रहती है क्या? समझ लीजिए सपने में आदमी देख रहा है कि मैं घर बांध लिया हूं और उसमें मैं यह ऑफिस खोला हूं, यह ऑफिस खोला हूं, इतना फोन लगा लिया हूं, और जगे तो कुछ भी रहे था। तो ये प्रश्न होगा प्रतीति क्यों हो रही थी, वहां तो कुछ भी नहीं था, ना ऑफिस था, ना बेंच था, ना टेबल था, ना फोन था, कुछ नहीं, तो क्यों प्रतीति हो रही? तो वह तो माना जा सकता है कि भाई वह मनोभ्रम है, स्वयं पूरा नहीं हुआ तो मन का एक दूषित अवस्था कल्पना कर लेता है, लेकिन उसी तरह से ये सब तो नहीं है। इसको कैसे मान लिया जाए कि यह सपना है? ये वास्तव में सपना नहीं है, परंतु सपना की तरह अनित्य है। कहने का मतलब ये है, ये रहेगा नहीं और पहले भी नहीं था, पर सपना तो वास्तव में मिथ्या होता है। तो यह भगवान की लीला है, सृष्टि है, वस्तुओं की रचना किए हैं, किसी बच्चे को जन्म देते हैं, और जो विवाह शादी वगैरह होते हैं, जो वास्तव में भगवान ने स्त्री बनाया है, पुरुष बनाया है, फिर नियम भी बनाया है, व्यवहार बनाया है, ये सब चलता है, ईश्वर की सृष्टि है, क्योंकि वे भूतेश हैं, वे जीवों के ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, वही खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, सब करते हैं। परंतु भगवान की एक चाल है, वो सृष्टि करते हैं तो भूतई जीवों के द्वारा सृष्टि करते हैं, स्वयं आकर के कुछ नहीं गढ़ते हैं। यहां पर भूतई ही का अर्थ पित्रादि भी, माता पिता आदि द्वारा भूतानि पुत्रादि सृजति, वो जीवों से जीवों की सृष्टि कर लेते हैं। भगवान की ऐसी माया शक्ति है कि वह जीवों में भ्रम पैदा करती है, मोह पैदा करती है, और दो जीव मिलकर के एक जीव की सृष्टि करते हैं। जीव की सृष्टि अर्थात देह की सृष्टि, यह कहने का अर्थ, आत्मा की सृष्टि नहीं की जा सकती, न जायते मृतेरा कदाचित, परंतु देखा जाता है कुछ जीव मिलकर के कुछ जीवों को पैदा करते हैं, माता पिता आदि मिलकर के बच्चे पैदा करते हैं। तो बच्चों को यहां भूतानी कहा गया, और भूतई पितृ आदि भी भूतेशा सृजति, वही सृष्टि करते हैं। अवति माता पिता के रूप में सृष्टि करते हैं, राजा सरकार आदि के रूप में अवति रक्षति, और सर्प आदि के रूप में हंति मार देते हैं। यहां जो कोई भी व्यक्ति मर रहा है किसी भी रोग से या एक्सीडेंट से कुछ भी देखा जाए, लेकिन तत्वतः यह ईश्वर के द्वारा सब हो रहा है। ईश्वर जीवों के द्वारा जीवों को पैदा करता है, जीवों के द्वारा जीवों का पालन करता है, और जीवों के द्वारा जीवों को मार देता है। पर ऐसा देखा जाता है कि कभी कोई मर गया, किसी को मार दिया कोई, तो दूसरे पर दोषारोपण किया जाता है, और विशेष करके ईश्वर पर। ईश्वर पर उस समय दोष लोग देते हैं जब कोई मर जाता है, तो उसके स्वजन लोग, परंतु जन्म होता है और पालन होता है तो कहते हैं कि हम बहुत कमाई करके तब पाल रहे हैं। उस समय ये नहीं कहते हैं कि भगवान चला रहा है, भगवान पाल रहा है, ऐसा नहीं कहते हैं। परंतु वास्तव में भगवान पालन करते हैं। सारी दुनिया में देखिए तो कितने बच्चे रोज हो रहे हैं, कितने जीव जंतु रोज पैदा हो रहे हैं, उनको पैदा करने वाले कोई न कोई माता पिता है। तो माता पिता को प्रेरित करके भगवान उनसे सृष्टि कराते हैं, राजा के द्वारा पालन कराते हैं, सर्प व्याघ्र आतंकवादी आदि के द्वारा मार देते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। इसे ये नहीं समझना चाहिए कि आतंकवादी भगवान से लाइसेंस लिए हैं मारने का, इनको इनके लिए दूसरे भगवान आतंकी पैदा करते हैं तो उनको मार दिए। जितने आतंकवादी हैं वे भी मारे जाते हैं बुरी तरह से, ये भगवान की व्यवस्था है। तो ईश्वर इस तरह से जगत की सृष्टि करता है और जीवों में उसकी माया जो है ये भावना पैदा करती है कि यह मेरा है। यदि इस तरह की भावना न हो तो कौन किसका पालन करेगा। भगवान को बहुत चिंता लग जाएगी वैकुंठ में कि तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा था महाभारत में, तो भगवान उसको गीता समझा बुझा करके काम कराए। नहीं चलो लड़ो लड़ो लड़ो, काम करो काम करो। भगवान ने साफ कहा कि निठल्ले बैठे रहने की अपेक्षा कर्म करना ठीक है। भगवान नहीं चाहते हैं कि संसार मरे हुए लोगों से भर जाए चुपचाप, कोई काम धंधा नहीं कुछ नहीं। खूब चलना चाहिए, जब सृष्टि किए हैं तो खूब अच्छा से चलना चाहिए। तो भगवान इस तरह की भावना पैदा करते हैं, माया शक्ति जीवों में स्नेह उत्पन्न करती है, अज्ञान उत्पन्न करती है, जिससे कि जीव सबका पालन कर सके। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है दो स्थान पर, एक जगह कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पुरुषों की सृष्टि किया और उनको कहा कि तुम काम करो ठीक से रहो। तो उन्होंने देखा कि ये पुरुष जो है सारे उच्छृंखल हो रहे, कुछ कर नहीं रहे थे, ऐसे ही घुमा कर जैसे घूम रहे थे। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अब क्या करें, तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने आधे देह से मनोमय देह से स्त्री की सृष्टि किया। जब स्त्री की सृष्टि किया तो जया पुंसम मतिर हृता, तो उसने पुरुष की मति को कैप्चर कर लिया, हृता शब्द का हरण कर लिया। तो वो सेंटर में आ गई, अब बस अब उनको काम करना ही है, सब कुछ करना ही है, अब ठीक हो गए। तो ब्रह्मा जी काम कराने के लिए स्त्री की सृष्टि किए कि स्त्री की ममता में पढ़ करके जीव फिर घर बनाता है और सब करता है। यदि स्त्री नहीं रहे तो पेड़ के नीचे भी रह जाएगा, उसको चिंता ही नहीं होगी। लेकिन स्त्री लाने के लिए तो पहले घर बांधना पड़ता है, है ना, देखा जाता है। पुराना घर है तो उसका रिनोवेशन करते हैं, सजाते हैं, क्योंकि नई वधु के आने के पहले घर चमकना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो यह सृष्टि ही स्त्रियों के लिए है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। ब्रह्मा जी ने ये किया। यहां पर बताया जा रहा है कि भूतेश्वर भगवान जीवों से जीवों की सृष्टि करते हैं, जीवों से जीवों का पालन कराते हैं और वध करा देते हैं। तो यह भगवान की शक्ति है जो जीवों में इस प्रकार की भावना पैदा करती है और ये प्रतीति होती है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा यह है, यह हमारा ये है, यह हमारा शत्रु है, यह हमारा ऐसा है, ये है वो। ये न हो तो कोई काम धंधा चलेगा ही नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने पांच प्रकार की अविद्या की सृष्टि की है। पहले कि यहां पर जितने जीव हैं ये सब अपने स्वरूप को न जान जाए। यदि जान जाए कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं तो ये सब माया के कार्य में फंसेंगे नहीं। इसलिए पांच प्रकार की अविद्या की सृष्टि की कि सब यही समझे कि हम देह हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमको ये करना है वो करना है, इस फिक्र में लगो जाए सब। इसके लिए उन्होंने सृष्टि किया। ये ऊपर से ही सारी व्यवस्था चल रही है कि जीव अज्ञानी रहे और बीच में आकर भगवान भगवत गीता बोल जाते हैं, सिखा जाते हैं कि ऐसे करो, मेरी भक्ति करो, यह करो वह करो। लेकिन संसार भी चलाना है ना भूतेश जी को। क्या, और अभी भी देखा जाता है कि अगर थोड़ी सी आध्यात्मिकता की ओर कोई झुकता है तो बस कमंडल उठाया हिमालय की तरफ चलो। ऐसा सभी हो जाए तो ये तो शून्य हो जाएगी सृष्टि, इसलिए अज्ञान जरूरी। तो नारद जी कहते हैं कि यह भगवान की माया से हो रहा है। आत्मसृष्टि ये भूतल का विशेषण है, भगवान स्वयं ही जीवों की सृष्टि किए हैं और अस्वतंत्र है, कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, जैसा भगवान नचाते हैं नाचता है। तो ये प्रश्न होता है कि श्री भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? यदि कोई अपना उनका उद्देश्य होगा सृष्टि के पीछे तो उनके पूर्णता में हानि होती है, माना जाएगा कि पूर्ण नहीं है, उनको अभाव है। अपनी पूर्णता के लिए कुछ इच्छा है तब तो सृष्टि करते हैं, तो कहते हैं नहीं, अनपेक्षा भगवान को सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। तो क्यों सृष्टि करते हैं? बालवत, बच्चे की तरह सृष्टि करते हैं। बच्चे कभी कभी समुद्र के किनारे या नदी के तट पर या कहीं घर से बाहर खेलते हैं, तो कई खिलौना बनाते हैं, सृष्टि करते हैं, घरौंदा बनाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन उनका कोई बहुत उद्देश्य नहीं होता है। बच्चों को हमने लोगों ने देखा है खेलते हुए, तो खेलते हैं खासकर नदी के तट पर, बालू का घर बनाते हैं और कहते हैं कि इस घर में रसोई पकाया जाएगा, इसमें ये किया जाएगा, इसमें ये रखा जाएगा, सब बच्चे खेलते हैं। हम लोगों ने देखा अपने गांव में नदी है तो उसमें हमेशा देखते हैं ये घर, पूछते भी हैं इसमें क्या करोगे, तो इसमें देवता रहेंगे इस घर में, इसमें रसोई घर रहेगा, इसमें गाय के लिए भूसा रहेगा, इसमें गोईठा रहेगा, कंडा रहेगा। गांव के लड़के बताते हैं इसमें ये रहेगा, ये सोने का रहेगा। और जब टाइम हो जाता है खाने का अथवा शाम हो जाती है तो अपने बनाए हुए घर को लातों से लाटा लूटी करके चलो, खूब आनंद आता है उनको ढहाने में भी, जैसे बनाने में आनंद आ रहा था वैसे ढहाने में भी, लात से पीटने में भी, इसके बाद चलो हंसते हुए चलो। भगवान भी इसी तरह से, उनका कोई अपना प्रयोजन नहीं है, रचते हैं सृष्टि चलता है, इसके बाद प्रलय काल में लाता लूती करके वो भी सो जाते हैं। से कौन झंझट चलाने जाए, वो भी क्षीर समुद्र या गर्भ समुद्र में सो जाए। यहाँ पर बालवत कहा जा रहा है, बालवत बालक की तरह भगवान है, मौज में रहते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में एक बच्चा गुरु माना जाता, उसको कोई चिंता नहीं होती है कि कैसे घर का खर्चा चलेगा, क्या होगा, बच्चा बहुत खुश रहता है, मान अपमान का भी बोध नहीं होता है, घर की चिंता नहीं होती है, आराम से सो जाता है, खा लेता है, पी लेता है। तो भगवान भी बच्चे की तरह, उनको कोई चिंता नहीं, वो सब तरह से परिपूर्ण है, ये सृष्टि करते हैं। अच्छा, और आगे बता रहे हैं कि ये जो जन्म मृत्यु या पालन, ये जो व्यवहार है जन्मादि, जो व्यवहार है वास्तव में देह का होता है, आत्मा का नहीं। जन्म आत्मा का नहीं होता है, पालन आत्मा का नहीं होता है, और विनाश भी आत्मा का नहीं होता है, देह का केवल होता है। देहे न देहि न राजन, देहा देहो भी जायते, बीजा देह यथा बीजम, देही अर्थ यशाश्वत। हे राजन, देही के देह से, देही के देह द्वारा देही का देह अभिजायते, जन्म लेता है। तो तीन बार यहां देही कहा जाएगा, देही शब्द एक बार है लेकिन तीन जगह लगाना पड़ेगा। देही कहते हैं देह वाला, आत्मा को देही कहते हैं, और देह का अर्थ तो शरीर है। देही के देह से, देही के देह द्वारा देही का देह उत्पन्न होता है। ये अर्थ है। तो देहेन का यहां अर्थ है पित्रा, पिता के द्वारा, तो पिता भी एक देही है, देह वाले हैं। तो देह वाले पिता के देह से, देही माता के देह से, देही जीव का देह अभिजायत, ऐसे जन्म लेता। एक बच्चा जन्म लेता है तो दो देह से जन्म लेता है, पिता के देह से जो देहे ना, तो माँ के देह से प्रकट होता है तो देहात, और उसका देह जन्म लेता है इसलिए देह ना देह अभिजायत। यहाँ देह देही देह देह इसलिए कहा जा रहा है कि आत्मा जन्म नहीं लेता है, आत्मा नहीं बढ़ता है या पाला पोसा जाता है या और आत्मा नहीं मरता है। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा अनुभूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। पिता के देह से वीर्य स्खलित होता है तो वह माँ के गर्भ में उत्पन्न होता है, बाद में देही देहात माँ के देह से वह देह प्रकट होता है। ये देह प्रकट होता है, देह बनता है माँ के गर्भ में, न कि आत्मा। आत्मा का साइज कभी कम नहीं होता है न कभी बढ़ता है, वो जैसा रहता है वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि आत्मा को पानी नहीं दिया जाएगा तो मर जाएगा, उसको भात नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, ये सब देह के लिए जरूरी है, आत्मा के लिए नहीं। बीजा देव जो था बीजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है, इस तरह से एक देह से दूसरा देह पैदा होता है। देहर्थ है यह शाश्वत, देही जो है देह वाला आत्मा वो शाश्वत है, वो नहीं जन्म लेता है नहीं मरता है। कैसे? अर्थाइव भूमि आदि के समान वो शाश्वत। इस तरह से जैसे खेत है, खेत हमेशा रहता है, कुछ काल के लिए मान लीजिए उदाहरण दिया जा रहा है, अर्थ का अर्थ दे भूमि, अर्थ में सबसे पहला अर्थ है भूमि, तो भूमि से हर एक साल कुछ न कुछ फसलें पैदा होती रहती है। झाड़ भी उत्पन्न होते हैं, विकृत होते हैं, कुछ काल में झड़ जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन भूमि ज्यों की त्यों रहती है, पृथ्वी रहती है और उसमें और चीजें जन्म लेती रहती है। तो उसी तरह से आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन आत्मा की उपस्थिति के कारण उससे देह उत्पन्न होते रहते हैं, देह उत्पन्न होते रहते हैं, पर आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, शाश्वत रहता है। देह जन्म लेता है तो देह मरता भी है, देह छोटा है तो देह बढ़ता भी है, देह पतला है तो देह मोटा भी है, मोटा है तो छीण भी होता रहता है। कई लोग रोज इस फेर में पड़े हुए हैं कि देह को थोड़ा पतला किया जाए, या पतले देह वाले सोचते हैं थोड़ा और भर जाए, देह मोटा हो जाए, है ना। पर आत्मा तो ज्यों का त्यों है, देह कभी पतला हो जाता है या मोटा हो जाता है या जल जाता है कट जाता है जो कुछ भी हो, पर आत्मा को ये सब प्राकृतिक पदार्थ स्पर्श नहीं कर सकते। नैनम छिंदंते शस्त्राणि नैनम दहति पावकर नैनम क्लेद्यं चापुन न शोषयति मारुतः। कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, आत्मा जब से है ऐसा ही है, लेकिन इसको पता नहीं कितने कितने शरीर मिले होंगे, इसके कर्मों के कारण उत्पन्न होते रहते हैं देह, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और उसमें जीव को पता नहीं कितना कितना देह लेना पड़ा होगा, छोड़ना पड़ा होगा। तो जो भी जन्म हुआ, बढ़ना घटना हुआ या मरना, देह का हुआ, आत्मा ज्यों का त्यों रहा। जैसे भूमि, भूमि में कितनी फसलें रोज पैदा होती है या साल में, कोई मान लीजिए चावल का खेत है तो वर्ष में कभी कभी 2 बार 3 बार भी फसलें लगाई जाती है, बंगाल में हम लोगों ने देखा है फसलें उत्पन्न होती हैं। भूमि ज्यों का त्यों, कितनी फसलें हुए और काट दिए गए, तो इस तरह से आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन ये देह का केवल जन्म आदि होता है। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि एक बहुत प्रश्न उठता है कि यदि देह नश्वर है और नश्वर देह का प्रतियोगी है आत्मा, तो आत्मा भी नश्वर हो सकता है, एक प्रश्न बनता है, क्योंकि देह के साथ ही व्यवहार हो रहा है आत्मा का। जैसे आत्मा को देही कहते हैं, देही का अर्थ है देह वाला, देह वाला, तो अगर देह छीण हो रहा है, देह काला है गोरा है या बुखार आ रहा है, तो देह के चूंकि साथ है आत्मा, तो आत्मा पर भी प्रभाव तो होता ही होगा, रादर नहीं। देह देही विभागो यम अभिव्यक कृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागो यम जथा वस्तुनि कल्पितः। वास्तव में देह है और देह का विभाग, देही का विभाग, यह अभी अविवेक के द्वारा, अज्ञान के द्वारा कल्पित है। न तो कोई देह है न कोई देही है, देह है नहीं वास्तव में कुछ भी, अब जथा वस्तु निकल्पिता, जैसे मान लीजिए मिट्टी है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी में से निकले हुए विकारों को हम लोग अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे कभी हम लोग जाति नाम दे देते हैं या व्यक्ति नाम दे देते हैं, तो पृथ्वी से बहुत वस्तुएं निकलती हैं। मिट्टी के कोई घड़ा बना है, कोई कुल्हड़ बनता है छोटा सा, कोई दीपक बनता है वास्तव में वो मिट्टी, लेकिन उसी मिट्टी को हम लोग नाम दे देते हैं दीपक या कुल्हड़ या घड़ा, या गर्मी के दिन में पानी पीते हैं और लंबा मुंह वाला क्या होता है, सुराही। तो सुराही हो चाहे घड़ा चाहे कुल्हड़ चाहे कुछ भी है मिट्टी। तो जैसे वस्तुनि जाति व्यक्ति विभाग होता है, हम मान लेते हैं कि यह इस जाति का है, इस जाति का, जाति से मतलब यह वृक्ष है यह पृथ्वी का विकार, पृथ्वी इस रूप में आई हुई है। लेकिन हम लोग व्यवहार में हमेशा कहते हैं जाति विभाग में जैसे करते हैं, यह वृक्ष है, ये तो एक विभाग हुआ। दूसरा जाति विभाग करते हैं, यह नारियल है, नारियल नाम दिया गया है पृथ्वी का विकार, लेकिन पृथ्वी के ही विकार में लाखों नाम दे दिए जाते हैं, लाखों विभाग किए जाते हैं। वास्तव में आत्मा के साथ देह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन पंच महाभूत जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन पांचों को मिला करके आकार में बना दिया जाता है, इसी को देह कहा जाता है। लेकिन इस नाम दे दिया गया इसको देह, पर है इसमें भूमि जल अग्नि वायु और आकाश, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक दिन यह देह रहेगा नहीं, रहता नहीं है, अंत में बिखर करके अपने कारण में विलीन हो जाता है। तो जब तक है अलग इस तरह से बना हुआ, तो इसको कहते देह है देह है देह है। इसमें जाति विभाग करते हैं और व्यक्ति विभाग करते हैं। जाति व्यक्ति विभाग हो जाए, जाति का अर्थ है कि मनुष्य है या वृक्ष है या पशु है, और व्यक्ति विभाग करते हैं फिर विविध नाम देते हैं, या है या है। व्यक्ति विभाग किसी का भी कोई नाम रख दिया जाए, लेकिन अंततः तो सब माटी के धोंधा हैं, सब मिट्टी के विकार है, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो देह नाम जो दिया जाता है कि यह देह है यह है, अविवेक से दिया जाता है, वास्तव में कोई देह है नहीं, है पंच महाभूत, उसका आकार गढ़ दिया गया इसलिए नाम दे दिया गया ये है ये है। खास करके मनुष्यों के शरीर पर विचार कीजिए तो सबका शरीर लगभग एक समान है, एक स्टॉक है, पंच महाभूत है, उसी में से ले लेकर के गढ़गढ़ कर करके नाम दे दिया गया। उसमें हम लोग नाम दे देते हैं यह मुसलमान है या क्रिश्चियन है या हिंदू है। अच्छा, उसमें भी यह इस जाति का है यह इस जाति का है, जाति में भी यह व्यक्ति है वह व्यक्ति है, और अंत में सारे ध्वस्त होकर के फिर मिट्टी के मिट्टी में चले जाते हैं। तो बीच में जो ये विभाग किया जाता है, जाति विभाग व्यक्ति विभाग, तो इसी तरह से ये देह विभाग किया गया। वास्तव में देह कुछ है नहीं, और देह के साथ आत्मा को देही कहते हैं या शरीर कहते हैं उसको, तो यह अभी केवल कल्पना और व्यवहार की बात है। वास्तव में इस देह में आत्मा फंसा हुआ नहीं है, और न तो देह के आकार वाला हो गया है, न तो देह के सुख दुख से उसको कोई मतलब है। जब व्यक्ति सोता है तो सारा दुख भूल जाता है, तो एक दिन इस देह को आत्मा छोड़ करके चला जाता है तो कोई इसके साथ संबंध नहीं रहता, तो कैसे कहा जाए कि वो देह ही है, इस देह वाला था। इसके बाद उसको याद ही नहीं आती है कि वो देह कीड़ा खाया कि आग में जला, क्या हुआ। तो आत्मा में यह कहना कि यह देही है, यह भी एक गलत है। यहां पर नारद जी कहते हैं कि देह देही विभागो अयम अविवेक कृतः पूरा, जाति व्यक्ति विभागो अयम जथा वस्तु निकल्पित। जैसे वस्तुओं में पंच महाभूत में हम लोग कल्पना कर देते हैं यह है वह है, जैसे मावा है, मावा को लेकर के दुकान में मिठाइयां बनाते हैं, उसमें चीनी है मावा है और मान लीजिए कोई चीज, लेकिन उसका नाम रख देते हैं ये पेड़ा है बर्फी है यह है वह, ये जो विभाग हुआ ये विभाग करते हैं, लेकिन वास्तव में मावा के अलावा कुछ नहीं है। या और जो आइटम जिस आइटम से बना हुआ है अंततः हुआ हुआ ही है। जब तक वो एक धोंधा के रूप में रहता है मावा, तब तक मावा नाम रहता है, और जब काट कुट कर मिठाई बना दिया गया तो ये हो गया ये हो गया ये हो गया, तुरंत बदल जाता। लेकिन तत्वतः वो अपने स्वरूप में है मावा। अच्छा है, इसी तरह से ये देह नहीं है वास्तव में, ये पंच महाभूत है। ये गड़गड़ करके धुंधा अलग अलग करके थोड़ा किया गया है, उसके बाद फिर अपने स्वरूप में हो जाएगा। अच्छा, ये तो देह का विभाग गलत है, अज्ञान से कल्पित है, और आत्मा का देही विभाग जो है उसको कहना वो भी गलत है, क्योंकि वो देह से बिल्कुल भिन्न है, फिर दूसरे देह में जाता है। और देह में रहते हुए देह से असंग है, देह को काट दिया जाएगा आत्मा नहीं करता है, देह जल जाता है आत्मा नहीं जलता। हवा देह को सुखा सकती है लेकिन देह आत्मा सुखता नहीं। ये तो केवल व्यवहार चलाने के लिए कह दिया गया है, ये देह है और देही है, लेकिन वास्तव में अज्ञान से कल्पित है। आत्मा जो है पृथ्वी की तरह, अर्थ की तरह शाश्वत, इतना समझाए, इतना समझा करके दोनों भाई चुप हुए। श्री शुकाच एवं आश्वासित राजा चित्र केतुर्द्विजाति द्विजुक्ति भी प्रमृज पाणिना वक्त्रम आधीमला नम भाषक। इतना सुनते ही राजा चित्रकेतु को ज्ञान हो गया, क्योंकि पहले से भक्त थे, बीच में ममता का ऐसा झटका लगा था कि वे इतने अज्ञानी हो गए थे, लेकिन वास्तव में भक्त थे। तब इस प्रकार द्विजोक्ति भी उन ब्राह्मणों के सब उपदेशों से इनको जब ज्ञान दिया गया, एवं आश्वासित आश्वासन दिया गया, ज्ञान दिया गया, तो अपने प्राणी ने अपने एक हाथ से आधी मलानम वक्रम प्रमृज, चिंता से रोने से इनका मलिन चेहरा हो गया था, उस चेहरे को एक हाथ से प्रमृज पोछ करके, और तब वे बोले नारद जी और अंगिरा जी से। राजा चित्रकेतु का मुख मलिन हो गया था बिल्कुल, आधी मलानम, और कुछ भी नहीं हुआ था राजा को, न तो बुखार आया था, न कोई धूप लग रहे थे, न कुछ भी, लेकिन भीतर जो शोक हो रहा था वो शोक उनके मुख कमल को सुखा दिया था, उनका मुख बिल्कुल मुरझा गया था। इस कहते हैं आधी मलानम, चिंता के कारण मलिन, तो एक हाथ से मुख पोछ प्राणी ना। ये प्रश्न होता है कि दोनों हाथ से आंसू क्यों नहीं पोछे, दोनों हाथ से पोछ सकते थे। इसका उत्तर यह है कि राजा इतना कमजोर अनुभव अपने को कर रहे थे शोक के मारे, कि एक हाथ से धीरे धीरे उठे और ऐसे एक हाथ से पोछ रहे थे, एक हाथ फंसा हुआ था खंभे की तरह शरीर को टांगने, सीधा बैठ नहीं सकते थे, इतना दुख में थे, एक हाथ से आंसू पोछे और पूछते हैं राजोवाच। कौ जुयान ज्ञान संपन्न महिष्ठ च मही असाम अवधूते न भूदेशेण गूढ़ा विह समागत। कौ जुयान, आप दोनों कौन हैं? जब शुरू में आए थे तो मर रहे थे, लोट लोट लड़के के छटपटा रहे थे, अब पूछ रहे आप कौन हैं? थोड़ा ज्ञान हुआ तो पूछने लगे, आप कौन हैं? ज्ञान संपन्न, आप दोनों ज्ञान से परिपूर्ण हैं, संपन्न हैं, महिषम च महिष्ठ, महात्माओं में आप दोनों श्रेष्ठ महात्मा लग रहे हैं, महानों में सबसे श्रेष्ठ आप दोनों। अवधूत इन वेश एना गूढ़ हो यह समागत, अवधूत के वेश में आप दोनों अपने स्वरूप को छिपाए हुए हैं। अवधूत का अर्थ होता है त्यक्त शरीर आदर, जो व्यक्ति शरीर पर कोई ध्यान नहीं देता है, केवल आत्मा के कल्याण में लगा रहता है, और ठीक से पहनता भी नहीं है, न ठीक से घर बांधता है, न रहता है, उसको अवधूत कहते हैं। तो भगवान में इतना मन उसका लगा रहता है कि अब शरीर सजाना, घर सजाना, इस पर उसका ध्यान नहीं रहता, तो उसको अवधूत कहते हैं। अवधूत का अर्थ यह नहीं है कि पूरा मन देह में ही है लेकिन फिर भी नग्न घूम रहा है, पहन नहीं रहा है जानबूझकर समाज को ठगने के लिए, उसको अवधूत नहीं कहते। पहले जमाने में मानता था कि कोई अवधूत है तो लोग ये सोचते थे कि बेचारे को अपने शरीर की शुद्धि नहीं है, भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, ऐसा लोग मानते थे। तो अवधूतों का बहुत बड़ा आदर था। तो कुछ जो ठग होते हैं वो लोग सोचते हैं कि जब अवधूतों का आदर होता है तो हम भी ऐसे बाजार में नग्न घूमेंगे तो हमारा आदर हो, हम भी शरीर का आदर नहीं कर रहे, हम भी जटा बढ़ाए रखेंगे, जैसे तैसे राख लगाएंगे तो हमारा भी आदर होगा, होता ही है। लेकिन नारद जी और अंगिरा जी वास्तव में और भूत जैसे हैं, तो ये लोग बहुत तरह के कपड़ा नहीं पहनते हैं, बहुत साधारण कपड़ा पहनते हैं, जूता तो कभी लगाते ही नहीं, कभी कंघी नहीं करना, कुछ नहीं। नारद जी की जटाएं चमकती हैं लेकिन कभी कंघी नहीं किए होंगे, चमचम सूरज की तरह जटा चमकती है। तो पूछते हैं कि अवधूत न वेश न गूढ़, आप दोनों अवधूत के वेश में अपनी महिमा को छिपाए हुए हैं, आप कौन हैं जो मेरे पास आए हैं? फिर वो दोनों भाई चुप थे तो अपने आप ही कहते हैं, चरंत योनौ कामम ब्राह्मणा भगवत प्रिया। मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पर भगवान के प्रिय ब्राह्मण लोग घुमा करते हैं, भगवान के भक्त वैष्णव ब्राह्मण सब घुमा करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। क्यों भ्रमण करते हैं? मादृशान ग्राम्य बुद्धिनाम बोधाय बोधाय, मेरे जैसे ग्राम्य बुद्धि लोगों को ज्ञान देने के लिए घुमा करते हैं। महाराज चित्रकेतु अब समझ रहे हैं कि मैं ग्राम्य बुद्धि हूं। ग्राम्य का अर्थ होता है समूह में भोगे जाने वाला सुख, ग्राम्य कहते हैं। खास करके कोई व्यक्ति स्त्री में आसक्त होता है और स्त्री पुरुष के जो व्यवहार है, घर बनाना, खाना कमाना, सब यही, इसको ग्राम्य कहते हैं। ग्राम्य बस इंद्रिय तृप्ति में जो लोग लगे रहते हैं उनको ग्राम्य कहा जाता है। तो हम हैं ग्राम्य बुद्धि, तो जिनकी बुद्धि केवल भोगों में विषयों में लगी रहती है उनको ज्ञान देने के लिए बहुत से ब्राह्मण बहुत से वैष्णव इस पृथ्वी पर भ्रमण किया करते हैं, उन्मत्त लिंग न, और ऐसा देखने में लगता है कि वो पागल हैं, उन्मत्त हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में हम जैसे मूर्खों को विषयों को तारने के लिए उद्धार करने के लिए लोग घुमा करते हैं। ये राजा बहुत बड़े राजा थे तो उनको इस बात का पता है कि भगवान के भक्त वैष्णव लोग कभी कभी अवधूत वेश में घुमा करते हैं, स्वयं ही नाम रख रहे हैं। कौन कौन लोग भ्रमण किया करते हैं संसार में तो कहते हैं कुमार नारद भृगु अंगिरा, अब नाम रख रहे, दोनों आए हुए हैं यहाँ पर लेकिन अभी पहचान नहीं रहे हैं। राजा चित्रकेतु कह रहे हैं जो पृथ्वी पर घूमते हैं हमारे जैसे विषयों का उद्धार करने के लिए तारने के लिए, तो उनमें जैसे नारद कुमार चारों कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ऋभु अंगिरा देवल असित, ये सब सुना गया है कि ये महात्मा भ्रमण किया करते हैं, क्योंकि इन लोगों का अपना कोई कार्य नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, दूसरे के हित के लिए भ्रमण किया करते हैं। ये सब नाम याद रहना चाहिए। आजकल के मूर्ख लोग कई तरह के अभिनेताओं का नाम याद रखते हैं और क्या क्या याद रखते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों के नाम नहीं याद रखते, ऋषियों के सब नाम याद रखने लायक। राजा चित्रकेतु को ये नाम सब याद, ये लोग भ्रमण किया करते, चार कुमार नारद मुनि ऋभु अंगिरा देवल असित अपांतरतम व्यासदेव मार्कंडे गौतम वशिष्ठ भगवान परशुराम भगवान कपिल देव भगवान श्रील सुखदेव गोस्वामी दुर्वासा मुनि जागीवाल्क्य जातुकर्ण अरुणी लोमस जी च्यवन दत्तात्रेय आसुरी पतंजलि वेदशिरा पंचशिरा हिरण्यनाभ कौशल्य श्रुतदेव ऋतध्वज इत परे च सिद्धेशा चरंती ज्ञान हेतव। ये सब सिद्धेश गण